एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल के वर्षों में साहित्य की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी। लॉरेन ग्रॉफ का उपन्यास मैट्रिक्स।
जी, 2021 में आया ये उपन्यास वाकई खास है। ग्रॉफ की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनकी भाषा।
हाँ, बिल्कुल काव्यात्मक, और जिस गहराई से वो महिला किरदारों की भीतरी दुनिया को कागज पर उतारती हैं वो कमाल है।
और मैट्रिक्स इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इतिहास के पन्नों से एक असली किरदार को उठाता है, मारी डी फ्रांस, 12वीं सदी की एक कवयित्री, जिनके बारे में सच कहूँ तो हमें लगभग कुछ भी नहीं पता।
सही बात है, और ग्रॉफ ने इतिहास के इसी खालीपन को, इसी खामोशी को अपनी कल्पना से भर दिया है।
बिल्कुल,
भाषाली महिला को किनारे कर देता है तो वो क्या करती है? क्या वो टूट जाती है या फिर अपनी ही एक नई दुनिया गढ़ लेती है?
मैट्रिक्स इसी सवाल का एक बहुत ही पावरफुल जवाब है। कहानी शुरू होती है साल 1158 में इंग्लैंड के शाही दरबार से। हमारी नायिका है 17 साल की मारी।
17 साल की?
हाँ, बस 17 साल की। उसे बहुत लंबी, थोड़ी बेडौल और मतलब दरबार के हिसाब से शादी के लायक नहीं समझा जाता है।
अच्छा।
और रानी एलिनोर ऑफ एक्विटन, जिनसे मारी एक तरफा और दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती हैं, वो उसे निर्वासित कर देती हैं।
उसे देश निकाला दे दिया जाता है, और वो भी ऐसी हालत में।
जी, और देश निकाला भी ऐसा कि उसे एक बहुत दूर भुखमरी और बीमारियों से जूझ रहे मठ की मुख्य संचालिका प्रायरेस बनाकर भेज दिया जाता है।
ये तो सजा से भी बदतर हुआ।
बिल्कुल, मारी के लिए तो ये किसी मौत की सजा से कम नहीं था। वो टूटे दिल, विद्रोह और जबरदस्त गुस्से के साथ वहां पहुंचती है।
और वो जगह कैसी थी, वो मठ?
आप बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं है। दीवारें ढह रही हैं, नने बीमार और भूखी हैं, और चारों तरफ बस निराशा का अंधेरा है। मारी को लगता है जैसे उसे जीते जी किसी कब्र में दफना दिया गया हो।
और उपन्यास का असली संघर्ष यहीं से, इसी निराशा से पैदा होता है। ये सिर्फ गरीबी या बीमारी से लड़ने की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
मारी को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना था। एक तरफ तो मठ की वो खस्ता हालत और उस समय का पुरुष प्रधान चर्च,
और दूसरी, शायद सबसे बड़ी लड़ाई, उसे अपने अंदर की निराशा, अपने अकेलेपन से लड़नी थी।
तो फिर कहानी में मोड़ कहाँ आता है?
वो इस सबसे निकलती कैसे है? कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब मारी को एक दिव्य दर्शन होता है। उसे वर्जिन मेरी दिखाई देती है, और वो उसे उसके खानदान की शक्तिशाली औरतों की एक पूरी वंशावली दिखाती हैं।
वंशावली मतलब?
हाँ, उसमें योद्धा थी, रानियां थी, भविष्यवक्ता थी, और उस वंशावली का अंत वो खुद मारी पर होता है।
अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये वाकई कोई दैवीय संदेश था या ये मारी के अपने जबरदस्त दिमाग की ही एक उपज थी जो उस घोर निराशा में अपने लिए कोई मकसद तलाश रहा था?
उपन्यास इसे खूबसूरती से हमारे ऊपर छोड़ देता है, पर चाहे जो भी हो, इस दर्शन का असर किसी जादू जैसा होता है। मारी के अंदर एक आग जल उठती है,
उसे एक मकसद मिल जाता है।
बिल्कुल, उसे लगता है कि अब वो हालात की मारी एक बेबस लड़की नहीं है। वो तुरंत मठ के कामकाज को अपने हाथ में लेती है, और उसका पहला कदम बहुत ही क्रांतिकारी था। वो एक स्क्रिप्टोरियम शुरू करती है।
स्क्रिप्टोरियम? हमें ये समझना होगा कि 12वीं सदी में इसका क्या मतलब था। उस जमाने में जब किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, तो एक स्क्रिप्टोरियम का होना ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया था या इससे कहीं ज्यादा कुछ?
ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। उस समय ज्ञान पर पुरुषों का, खासकर पादरियों का नियंत्रण था। किताबें लिखना, उनकी नकल तैयार करना, ये सब उनका काम माना जाता था।
तो मारी ने ये ताकत अपने हाथ में ले ली।
हाँ, अपना स्क्रिप्टोरियम बनाकर मारी ने ना केवल आय का एक स्रोत बनाया, बल्कि ज्ञान के उत्पादन का केंद्र भी अपनी महिला समुदाय के हाथों में ले लिया। नने पांडुलिपियों की नकल करती, उन्हें सजाती और बेचती। ये एक आर्थिक और एक बौद्धिक विद्रोह था।
यानी उन्होंने ज्ञान को ताकत बनाया, मठ की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और ननों में एक नया आत्मविश्वास जागा।
जी, और जब पुरानी मुख्य मठाध्यक्ष एबिस की मृत्यु होती है, तो अपनी कम उम्र के बावजूद सब जानते थे कि उनकी जगह कौन लेगा। मारी ही उनकी स्वाभाविक उत्तराधिकारी बनती है।
और मठाध्यक्षा बनते ही मारी का विजन, उसकी सोच और भी बड़ी हो जाती है।
हाँ, अब उसका लक्ष्य सिर्फ मठ को जिंदा रखना नहीं है, वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जो आत्मनिर्भर हो, सुरक्षित हो,
पुरुषों की दुनिया की सनक और हिंसा से पूरी तरह महफूज एक अभयारण्य।
बिल्कुल, और यही उपन्यास का शीर्षक मैट्रिक्स अपने सही मायने में सामने आता है। लैटिन में मैट्रिक्स का मतलब होता है माँ या गर्भ।
तो मारी उस मठ के लिए एक मैट्रिक्स, एक गर्भ बन जाती है
जिससे एक नई दुनिया, एक नया समाज जन्म लेता है।
वाह, मतलब उसका वो प्यार जो पहले रानी एलेनोर के लिए था, अब वो उस पूरे महिला समुदाय पर बसने लगता है।
जी, उनकी सुरक्षा और उनके विकास में अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। उपन्यास में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, वह एक मैट्रिक्स होगी जिससे मठ की भविष्य की सभी ननें पीढ़ी दर पीढ़ी निकलेंगी।
पर वो सिर्फ एक आध्यात्मिक नेता तो नहीं थी?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक कमाल की इंजीनियर और रणनीतिकार भी साबित होती है। मठ के पास एक नदी थी जिसमें अक्सर बाढ़ आती थी,
एक खतरा।
हाँ, लेकिन मारी उस खतरे को एक अवसर में बदल देती है। वो ननों के साथ मिलकर नदी पर एक बांध और पुल बनवाती है।
ये तो कमाल की बात है, मतलब उसने एक आपदा को एक संसाधन में बदल दिया। ये उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है।
बिल्कुल, उस बांध की मदद से एक पंचक्की चलती है जिससे मठ की आमदनी और बढ़ जाती है। फिर वो एक कुशल प्रबंधक की तरह और जमीनें खरीदती है, खेती को बेहतर बनाती है और चर्च की राजनीति को भी बड़ी होशियारी से संभालती है।
तो धीरे धीरे वो मठ हर तरह की महिलाओं के लिए एक पनाहगाह बन गया।
जी, बदनाम की गई कुलीन घर की औरतें, बेसहारा अनाथ लड़कियां सब वहां आकर सम्मान और सुरक्षा पाती हैं।
लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मारी ने जो दुनिया बनाई वो पुरुषों से तो सुरक्षित थी, पर क्या वो अपने आप में एक आदर्श जगह थी, या वहां भी सत्ता का वैसा ही नशा था जैसा पुरुषों की दुनिया में होता है? मतलब क्या मारी एक तानाशाह नहीं बन रही थी?
ये उपन्यास का एक बहुत ही गहरा पहलू है। ग्रॉफ मारी को किसी देवी की तरह नहीं दिखाती, वो ताकतवर है लेकिन उसकी ताकत उसे कभी कभी अकेला और क्रूर भी बनाती है। वो अपनी समुदाय से प्यार करती है पर उन पर उसका पूरा नियंत्रण है। तो हाँ, उस नारीवादी यूटोपिया में भी सत्ता की अपनी जटिलताएं थीं।
और शायद उसकी सबसे बड़ी और साहसी परियोजना इसी जटिलता को दिखाती है। अपने जीवन के आखिरी दौर में वो मठ के चारों ओर एक विशाल भूल भुलैया बनवाती है। ये सिर्फ एक दीवार तो नहीं थी, है ना?
नहीं, ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये उसकी जिंदगी भर के संघर्ष का प्रतीक थी। असल में तो ये कांटों, झाड़ियों और मिट्टी से बनी एक रक्षात्मक दीवार थी जो मठ को चोरों, सैनिकों और बिन बुलाए मर्दों, खासकर चर्च के अधिकारियों से बचाती थी।
और इसका प्रतीकात्मक महत्व क्या था?
प्रतीकात्मक रूप से ये स्त्री की बुद्धि, उसके रहस्य और उसकी शक्ति का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। ये एक ऐलान था कि इस दुनिया के नियम अलग हैं और यहाँ मर्दों के बनाए रास्ते काम नहीं करेंगे।
इसका कोई उदाहरण है उपन्यास में?
हाँ, सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब चर्च का एक अधिकारी मठ का निरीक्षण करने आता है। वो उस भूलभुलैया को पार ही नहीं कर पाता।
सच में?
हाँ, उसे बाहर से ही चिल्लाकर अपना काम करना पड़ता है और बेइज्जत होकर लौटना पड़ता है। ये पितृसत्ता पर मारी और उसकी बहनों की एक शानदार और खामोश जीत थी।
जीवन के अंत में मारी एक किंवदंती बन चुकी है। सब उससे डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उसका मठ आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से एक अभेद्य किला है, लेकिन इस कामयाबी की उसे एक कीमत भी चुकानी पड़ी।
हाँ, वो बहुत अकेली हो जाती है। नई पीढ़ी की जो नन है वो उसे एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि एक स्मारक, एक संस्था के रूप में देखती हैं।
वो उस जुनूनी, गुस्सैल और टूटे दिल वाली लड़की को नहीं जानती जो कई साल पहले इस मठ में आई थी।
बिल्कुल, अपने आखिरी सालों में वो अपनी कविताएं पूरी करती है और शायद उन्हीं में वो अपने जीवन के अनकहे जुनून और दुखों को बयां कर पाती है।
दूसरी तरफ एक अनिश्चितता
कि उसके बिना उस दुनिया का क्या होगा जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था।
तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे ठुकराई हुई महत्वाकांक्षा भी अपनी इच्छा शक्ति से एक साम्राज्य खड़ा कर सकती है।
और ये भी कि इतिहास उन अनगिनत औरतों की अनकही कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपनी सीमाओं को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।